इख्तलाफ क्या होता है? जब बात टकराव पे पहुंच जाती है। इंग्लिश में थोड़ा सा आसान लगता है ये समझाना मुझे। आप देखिए वैरायटी होती है ना, आप देखिए दुनिया में कितने रंग हैं। सेब अगर सुर्ख भी हैं तो पीले भी हैं तो सब्ज भी हैं, इसी तरह ऑरेंज कलर के ऑरेंज हैं, संतरे हैं, ये सब कुछ क्या वैरायटी है। दुनिया में अल्लाह सुबहान तआला ने मुख्तलिफ लोगों को बनाया है। ये जो पीछे भी कल थोड़ा सा जिक्र हुआ था ना आइमाए कराम के नाम पे, तो उसको भी समझ लीजिए, ये बहुत अहम हिस्सा है हमारे सीखने का, क्योंकि हम कुरान सीख रहे हैं। दीन के मुख्तलिफ रंग होते हैं, जैसे फूलों की एक बास्केट है ना, उसमें नीले पीले रंग है। आप कुरान सीखना चाहते हैं या दीन सीखना चाहते हैं, आप किधर जाएं? आप कहते हैं कि अभी तो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, लेकिन जब आपको मजीद सीखने का मौका मिलता है और जब आपका अपना शरह सदर हो जाता है फिर जाएं, वरना तो अल्लाह की पनाह आधा इल्म भी पूरा नहीं मिलता। दीन का काम करने वाले लोग जो ना, ये फूलों की तरह होते हैं, किसी की तवज्जो ज्यादा चली जाती है फिकी बातों पे, मसाइल में चले गए, कुछ ने अल्लाह के नामों पे गौर किया। मसाइल इसी आयत है ना, इसकी मैंने 10 दफा तफसीरें मुख्तलिफ तरह कराई होंगी, कभी मैंने इसमें से एक एंगल लिया, कभी दूसरा एंगल लिया। आप बजाय इसके कि दूसरे को कंडेम करें, आप उससे फायदा उठा लें। मिसाल है कि कुछ मुफस्सरीन हैं जो ग्रामेटिकल एनालिसिस बहुत कराते हैं, आप उनकी ग्रामर सुन लें। कुछ ऐसे हैं जो शान नजूल पे बहुत बात करते हैं कि रियायतें कहाँ उतरी, आप उनसे शान नजूल ले लीजिए। कुछ उसके साथ नबी सल्लम के हदीस जोड़ते हैं, आप उनके हदीस से ले लें। अब जब आप लोगों को बताएंगे तो आपके पास कितना कुछ होगा बताने को, आपके शान नजूल भी होगा, ग्रामर भी होगी, हदीसें भी होंगी, कुछ उसमें से अमल के नुक्ते लेंगे, तो आपकी बात एक फूलों का गुलदस्ता नहीं बन जाएगी। और अगर इसके ऑपोजिट एक नाम कोई भी ले ले, किसी का भी, फला मुफ्ती साहब, मैंने सिर्फ उनकी किताब खोलनी है। अब उन मुफ्ती साहब का एक मिलान है, हर बंदे का एक मिलान होता है। अगर आप मुख्तलिफ लोगों को सुन के देखें, सुना करें, कोई हरज की बात नहीं है सुनने में, आप के पास अगर वक्त है, कंप्यूटर पे है, यूट्यूब पे है, हक की बात सुने। मैं ये नहीं कहती कि अलफल सुने के जिसपे पता नहीं, लेकिन चंद लोगों के नाम कंफर्म कर लें, किनको सुने आप मुझसे ही पूछ लीजिएगा, मैं आपको ही बता दूंगी, जो मेरी नज़र में जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स हैं, इंग्लिश के भी हैं, उर्दू के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, आप उनमें से सुनिए। लेकिन उनके ना सुने जिनके अकायद बातिल हैं, वरना क्या होगा, वो आपको आपके रास्ते से भी हटा देंगे। अब एक सोच है, मैं सिर्फ चंद नाम मोहब्बत से ले लेती हूँ, मेरा किसी से जाती तौर पे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस्लाम के बारे में नॉन मुस्लिम के साथ बात करना पसंद करते हैं, या आपको जरा चाहिए कुछ चीज़ें, आप डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन लें, उर्दू सुन लें, उनकी इंग्लिश सुन लें, जो भी उनकी आपको अच्छी लगती है, आपको नॉन मुस्लिम के साथ दावा करनी बहुत अच्छी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा बोलते हैं इस बारे में। आपके दिल में कुरान की मोहब्बत और कुरान एक मिशन के तौर पे, आप डॉक्टर इसरार साहब को सुन लीजिए। बहुत उनके दिल में दर्द था कुरान का, बल्कि उन्होंने कुरान की तालीम को एक नया रुख दिया, आप उनका सुन लीजिए। आपको क्या लगता है, आपको सीधी सी बात करनी है जो औरतों वाली या मसाइल है, आप डॉक्टर फरहत हाशमी को सुन लें, आपको क्या हर्ज क्या है? ये लोग सारे कुरान की खिदमत कर रहे हैं ना, आप सुन लीजिए, आपका जिसको दिल करता है आप सुन लें। अब आप इनका सुनते हैं ना, तो किसी में से आपका दिल आएगा कुरान की मोहब्बत में, किसी की बात आप सुनेंगे तो आपको दावा करने को दिल करेगा। और नाम तो और भी बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ फेमस चंद नाम लिए आपके सामने, आपको फायदा होगा उससे। अब इसमें एक गलती क्या होती है, गूगल पे आपने लफ्ज़ डाला, मसलन कोई एक लफ्ज़, यही आयत डाल देते हैं, आयत 113 की तफसीर, मैं आपको कह सकती हूँ कम अज़ कम 200 तफसीरें आपके सामने खुलेंगी, मैं आपको कम अज़ कम 100 तफसीरें डाउनलोड करके दे सकती हूँ, जिस जुबान में मर्जी ले लें। अब आपको नहीं पता ये सूफी थे, आपको नहीं ये पता ये हनफी थे, ये नहीं आपको पता कि इनका मिलान क्या था वो था, अब आपने इसे एक आयत को 100 नहीं तो 10 तफसीरों से पढ़ा ना, आपका दिमाग उलझ जाएगा। मिलान मीन रुझान, इंक्लाइनेशन, तवज्जो, यानी वही बात हो जाती है कि खुद रो पौधे। मैं ऐसे लोगों से डील करती हूँ, आजकल भी मेरा किसी एक के साथ इस तरह का बड़ा सख्त इम्तिहान चल रहा है। मिसाल आपको देती है, एक पौधा जो किसी बाग में है, माली उसकी काट छांट करता है, उसको पानी देता है, उसके वक्त का ख्याल रखता है, खूबसूरत लगता है, और एक बिल्कुल पौधा ऐसा है जो रास्ते चलते आपके मतलब रास्ते में आ जाता है, ये तो कांटों से भरा हुआ है। जो लोग खुद बैठ के पढ़ते हैं ना, कल मैंने किसी से बात की, मैंने कहा खुदा के लिए इधर उधर से सुनना आप छोड़ दें, भटक जाएंगे आप। क्यों? कि आपको पता ही नहीं ना, आपके जहन में सवाल का जवाब आता है। जो लोग सिर्फ तकरीरें सुन सुन के दीन सीखते हैं ना, वल्लाह ही खुदरो पौधे हैं, उस्ताद का काम होता है कि शागिर्द की सोच को एक जगह बस रोक दे, बस स्टॉप, इसे आगे नहीं रुकना, यहाँ ठीक है, इसके आगे शैतान आपको बहका देगा। ट्रिमिंग होती है, बात होती है, डिफरेंट होती है। और आप आज एक लेक्चर सुने, आप कहते वाह, यानी अच्छे खासे लोग जो दीन पे जुड़े होते हैं ना जमे, वो भटकने शुरू हो जाते हैं। नाम लूं तो दिल टूट जाए कई लोगों के, कि वो इतने बड़े बड़े आलिम थे लेकिन सोच भटकी तो वो किधर चले गए। वजह क्या है कि क्राइटेरियन नहीं है। तो खुद रो पौधा बनना है तो जहां मर्जी बैठे उसका सुन उसका। आज अफसोस के साथ कहूंगी कि जब से ये नेट आम हो गया, अब हमारे दीन का सोर्स ही हो गया। 8 दिन के मुसलसल रोजे रखें, आज ये रोजा, कल वो रोजा, परसों ये रोजा। आप ये भी एक मैसेज सुनकर खुश हो गए, अच्छा मैं मंडे से मंडे अगले 8 दिन रोजा रखू, अगले दिन आपको एक मैसेज आ जाना है 9-10 का रोजा जो है ये ठीक है, ये जो 11 वाली बात है ये ज़ईफ़ रिवायत है, है? मैंने तो अभी सुना है कि क्योंकि वो अशूरे के बाद का रोजा है। अब ये एक ऑडियो आपको किसी ने भेजी कि 10-11 वाली तो रिवायत ही ठीक नहीं है, 9 ही 10 ठीक है। वैसे 11 को रख ले, लेकिन वो फजीलत नहीं जो आपको 9 की मिलनी थी। अब आप क्या करें, अभी आप एक मैसेज लोगों को भेज चुके हैं जिसमें 8 दिन के रोजे, अगला आप ये किस मुंह से भेजें जिसमें लिखा है कि 11 का रोजा नहीं। ये गलत तरीका होता है, खुदा के लिए ऐसी दीन की खिदमत ना करें। फोन उठाते हुए डर लगता है। आज ये जो बिला सोचा टिक टिक 100-100 मैसेज आते हैं, और मैं कह सकती हूँ लोग खुद भी नहीं पढ़ते। कई चीजें भेजी हैं, किसी ने पूछे बाद में, कहती मैं तो पढ़ा ही कोई नहीं, मैं तो आगे बटन दबा दिया। ये तरीका नहीं है, इल्म संजीदा कोशिश है। ये वक्त कब आता है कि आपको हर चीज का, आप देखें ना, दो चीजें एक इधर की आ रही उधर की, ये किसको पता चलेगा, जिसने उस्ताद के साथ बैठ के पढ़ा और वो चीज पे बहस हुई और सवाल उठे, बातें हुई, फिर बात हुई। तो जो नीम हकीम हमारे जैसे पहले टीवी से सीखते थे, अब वो व्हाट्सएप से इल्म सीखने लग गए और फेसबुक उनके साथ बन गई, याद रखे कहीं नहीं पहुंचेंगे। और मजे की बात है, ऐसे लोग सारी जिंदगी भी सुनते रहे, वो कभी आगे से सुनाने के काबिल नहीं होंगे। फलां बहुत नेक है, बहुत वर्ड, क्या किससे पढ़ा, नहीं वो घर बैठ के सुनते हैं। कोई सिस्टर थी तो वो बात कर रही थी, तो उन्होंने इस तरह की मेरे से बातें की, तो कहती आप उनसे बात करें। मैंने कहा वो किसके शागिर्द हैं, कहती नहीं वो बहुत लोगों को सुनते हैं। अच्छा वो किधर से पढ़े, कुछ नहीं पता, किसी एक नाम नहीं। मैंने कहा कोई सनद, कोई डिग्री, कोई किसी उस्ताद का उनके बारे में एक जुमला नहीं है, बस उन्होंने घर बैठ के बहुत सीखा। मुझे भी कहते हैं कि तुम खुद पढ़ो, ये छोड़ दो जाना आना, वल्लाही ये शैतान का रास्ता। किसी एक के सिरे चढ़ के गुमराह हूं, आप हमारे सिरे चढ़े, नूरुल कुरान में आप आ गए हैं ना, कल क़यामत के दिन जाके कह दीजिए कि अल्लाह ताला जो इन्होंने पढ़ाया हमने पढ़ा, इनको पकड़, तो हम इस पकड़ के लिए पूरे तैयार हैं। अल्लाह ना करे आपको या कुरान और हदीस के खिलाफ कुछ पढ़ाए, किसी फिक की रोशनी में किसी एक इमाम से जोड़ दें, बाकियों को पीछे कर दें, यानी इस पे 10 बातें हो सकती हैं। तो क्यामत के दिन आप किन 10 लोगों के नाम लेंगे, वो कहेंगे मैं तो इसको जानता भी नहीं, हमारे नाम में तो इनका नाम ही नहीं था, इन्होंने तो कभी फॉर्म नहीं फिल किया, इन्होंने तो कभी पेपर ही नहीं दिया। आज ये एक बहुत बड़ा फितना है जो प्लूट किया जा रहा है नस्लों को। पहले हमारे स्कॉलर्स का हाल और था। इमाम बुखारी 17 साल की उम्र तक अपने शहर के सारे उस्तादों से इल्म ले चुके थे। ये नहीं होता तरीका जो आपके बच्चे आजकल पढ़ते हैं ना, कि प्राइमरी से लेके मैट्रिक तक वो साइंस 1, साइंस 2, साइंस 3 पढ़ते हैं। इट्स नॉट द वे। एक आलिम के पास बैठती थी माएँ, लेके जाती थी। शहर में एक आलिम आते थे, बुखारा में आए तो बुलाओ भाई इस मेरे बच्चे को पढ़ा दो। 3 महीने वो रहते थे, 3 माह में वो अपना सारा इल्म दे देते थे उनको। ले लिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनके जाने का वक्त हो गया, कोई और आ गया, कहीं और ले गई, रहला बोलते हैं इसको, रहला। इल्म के लिए माएँ सफ़र कराती थी बच्चों को। ये तो हम अपने बच्चों पे इतनी ज्यादती करते हैं जिसका हाल नहीं है, और फिर दीन के नाम पे अगर कहीं दाखिल भी कराते हैं, वल्लाही मैं पूरे इखलास के साथ कहूंगी मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं, आप ये बातें जो सुन रहे हैं इसको इधर ही छोड़ के यहाँ से चले दें, मुझे आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कल गवार किसी से पूछती अमल आता कि नहीं आता, मेरी बला से आप यहाँ जाके अमल करें ना करें, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे ऊपर पहुंचाना है। लेकिन मैं आपको ये सच तरीके से बता दूं कि जब हम फिर दीन के नाम पे भी अपने बच्चों को कहीं दाखिल कराते हैं ना, किसी एक छाप वाला दीन, 12 साल का, 10 साल का, 13 साल का कोर्स है, बच्चा क्या बन के निकलता है, वो कट्टर हनफी बन के निकलता है, वो कट्टर शाफई बन के निकलेगा, वो कट्टर मालिकी बन के निकलेगा, वो कट्टर आप कह लीजिए कि इमाम अहमद बिन हम्बल से जुड़ के निकलेगा। अल्लाह ने साफ बात कर दी, अल्लाह के नबी ने कहा एक हाथ में कुरान और एक में सुन्नत, कहते सारे यही है सुन्नत है, लेकिन बाज दफा सरीहन हदीसों के मुकाबले में आयमा के अकवाल को कबूल कर लेते हैं। सच है कि नहीं, वल्लाही मैं हर साल ही जब ये आयतें आती है तो सुनाती हूँ। मेरे वाले तो हम लोग कराची में रहते थे, तो हमारे करीब एक मस्जिद थी, तो वो वहीं चले जाते थे नमाज पढ़ाने, लेकिन वो मस्जिद खुद को जो है वो हनफी मस्जिद कहते हैं वो लोग, तो आप कहते हैं कि हनफी जो है ना वो रफुल जदैन नहीं करते, जो मशहूर है उनके बारे में, यानी रुकू से उठते और वक्त हाथ नहीं, हालांकि अहादीस है। तो हम बिल्कुल छोटे थे, तो मुझे उस वक्त की ये चीज़ याद है, हमारे घर में एक किताब थी, मेरे पास भी रही है बहुत देर, अब तो सफ़र में पता नहीं किस मुल्क में होगी, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि मेरे वालिद ने एक दिन उनसे बात की कि आप नमाज में रफुल जैन नहीं करते क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, और किया है तो मंसूख हो गया था, जो भी उनके दलाइल है। तो मेरे वालिद वो बुक लेकर आए घर में से, घर में हमारे पास थी 247 हदीसें उस एक बुक में, सिर्फ नबी सल्लम की नमाज का तरीका था ना उसमें, हदीसें बुखारी की, मुस्लिम की, सियासिता की पूरी, जिसमें नबी सल्लम के अल्लाह अकबर रुकू में जाते और आते हुए हाथ उठाने का जिक्र था। मैं इस वक्त उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन इशारा बता रही हूँ आपको कि ये मौजू में और भी मौजूद है, ये भी था। मेरे वालिद ने जाके इमाम साहब के सामने बुक रख दी कि आप कह रहे हैं कि नबी सल्लम नहीं करते थे, कभी करते थे नहीं, तो ये 247 हदीसें के। आपको होता है कि वो सारी बुक सामने लिखी और हदीसें आप जाके खुद अपनी बुखारी से देख ले, नहीं जुटला सकते। उन्होंने कहा ये सारी बातें ठीक है, हमें भी बताइए हदीसें, पर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला का फतवा है कि नमाज के अंदर रफुल जैन ना करो, तो ठीक है, तो हम उस फतवे से नहीं हट सकते, मेरी इमामत चली जाएगी, मैं मानता हूं। वल्लाही मैंने ऐसे लोगों को देखा जो प्राइवेटली बैठते हैं, कहते हैं बिल्कुल आप कुरान सुन्नत वाले ठीक कहते हैं, बट हम इस मस्जिद के थ्रू या हम इस इदारे के थ्रू बात करेंगे तो हम जो है वो अपने एक खास मसलक के तहत करेंगे। तो फिर आप सिर्फ इमामों तक क्यों रुकते हैं? आप देखिए इमाम अबू हनीफा और चारों इमाम, मैंने जिनसे बात की, मैंने उन्हें कहा आप ये बताइए कि इन चारों इमामों में से बड़े कौन थे, कहने लगी इमाम अबू हनीफा। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला का दर्जा ज्यादा है या इमाम बुखारी का? कहती इमामों का, औसु बिल्ला, चारों इमामों का दर्जा बड़ा है इमाम बुखारी से? कहती अच्छा मैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा जी इमाम बुखारी का बड़ा है, मान लेते हैं आपके कहने पर, ठीक है। मैंने कहा इमाम बुखारी रहमहुल्ला का दर्जा बड़ा है या इब्ने अब्बास का दर्जा बड़ा है? तो अब इब्ने अब्बास तो साहबी है ना, तो कहने लगे कि मेरा ख्याल है इब्ने अब्बास का बड़ा होगा। तो मैंने कहा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का दर्जा बड़ा है या अबू बकर सिद्दीक का? तो अबू बकर का बड़ा है। तो अबू बकर सिद्दीक किस ग्रुप पे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर देखिए कोई उम्मतियों में से किसी के नाम से कोई जुड़ता तो सबसे पहले अबू बकरी, उमरी, उस्मानी, अलवी, ये चार नाम तो बनते ना फिर के। आज तो इस चार नामों का आपने कभी फिरका नाम सुना? अगर नबी सल्लम की हदीसें पढ़ के दीन नहीं समझ आता, मिसाल है स्कैटर्ड है, बिखर गई, और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला ने या बाद के चारों आइमा ने अपने अपने हिसाब से ये कर करा के दे दिया, तो जो आपको कहते पहले इमाम और नबी सल्लम के बीच में कितना फर्क है, नहीं पता लोगों को। इमाम अबू हनीफा का नाम क्या था, नहीं पता मुझे। एक दफा एक औरत ने ऐसी छोटी सी बात हो गई उनके साथ, तो कहने लगी हम तो हनफी हैं। मैंने कहा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? कहती पूछ ले। मैंने कहा जब तक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला का नाम क्या था? क्या मतलब कि उनका नाम नहीं था? मैंने कहा नहीं, ये तो कुनियत थी। कहती अच्छा मुझे नहीं पता। मैंने कहा उनकी किताब जो पढ़ाई जाती है उसका क्या नाम है? नहीं पता। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला के जो दो बड़े शागिर्द हैं जिनकी बुक्स आजकल पढ़ी जाती है, उन दोनों का नाम क्या है? नहीं पता। मैंने कहा उन दोनों की जो किताबें बड़ी मशहूर हैं फिकह हनफी में, जो असल में पढ़ाते हैं फिक में, उनके क्या नाम है? कहती नहीं पता। तो मैंने कहा फिर माफ करें, आपको हनफी होने का हक नहीं है, आपसे ज्यादा तो मुझे हक है कि मैं खुद को हनफी कहूँ। मैंने उनको सारे सवालों के जवाब दिए। कहती हमने तो कभी सोचा भी नहीं, बड़े कहते थे हनफी हो तो हनफी बन गए। देखिए मैं इस वक्त हनफी और शिया और ये इसकी बात नहीं कर रही, लेकिन इस बात की बात कर रही हूँ कि जब तक आपके और मेरे इस मुआशरे में दीन वालों का आपस में प्यार नहीं बढ़ता, दुनिया नहीं जुड़ेगी। ये जो आवाम फिर रही है ना बाहर सड़कों गलियों में, ये रिएक्शन है। मेम्बरों पर, मस्जिदों में, इज्तमात में, दुरूस में, जब हम कड़वी बातें दूसरे दीनदारों के लिए करें, मैं जो यहाँ आपके सामने बैठ के, मिसाल है कि नीचे भी मस्जिद है, इधर भी उधर, आपको पता है शहर में बहुत सी मस्जिदें हैं, आपसे मैं इनके कहूँ उधर ना जाना, खबरदार गए वो होगा ये होगा, तो आप मुझे बताएं वो भी मेरे बारे में यही कहेंगे। तो एक वक्त पता क्या होना है, आखिर में पढ़ेंगे इस सबक के एंड पे आएगा कि मस्जिदें आबाद नहीं रहती, फिर मस्जिदें बिगड़ जाती हैं, फिर लोग कहते हैं हमारा दिल ही नहीं करता मस्जिदों में जाने को, ये तो दूसरे फिरके के बारे में खिलाफ होते हैं। आप सर डाल के लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं, कुरान की एक आयत समझ आ जाए, मैं कह सकती हूँ पूरा कि आपका फेवरेट खाना आप खाएं ना उसकी एक बाइट ले तो जो सारा दिन खुशी रहती है ना, उससे ज्यादा खुशी मुझे आती है। सारा दिन मैं फील करती हूँ, अच्छा जी साथ में से ये बात मिली है, ये नई चीज समझ आई है, वो लज्जत ज्यादा बड़ी है। तो इस वक्त करना क्या चाहिए, आखिरी बात करके आगे चलो, क्योंकि अगला सबक में भी यही चीजें आएंगी। और वो क्या है कि हमें कुरान और सुन्नत को डायरेक्ट सोर्सेस के साथ जुड़ना है, जिससे मिलता ले लें, ये जो मैंने नाम लिए इन लोगों से भी लें, लेकिन वो इनकी बात ले लें जो हदीस के अंदर है। आखिरी बात कह दूं कि जैसे मिसाल है हमारे कल्चर में, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से बहुत सारे लोग ताल्लुक जोड़ते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, आप फिकह हनफी की दो किताबें अगर किसी के घर में भी ना उनसे मंगाएं, इधर ही ले आए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चैप्टर्स के चैप्टर्स, कुछ मौजूद ऐसे ही इमाम अबू हनीफा ने उस पर एक बात भी नहीं की। समझ आ रही है मेरी बात की आपको? देखिए मैं आपको कुरान पढ़ा रही हूँ या मैंने ये आयत पढ़ी, तो मैं दावा कर सकती हूँ कि मैंने आपको ए टू जी हर बात इस आयत की सुना दी है। कोई आलिम ये दावा नहीं करता। किसी को कोई चीज समझ आई, कोई नहीं आई। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने बाबु तहारत में बात की, किताब तहारत में हुई, नमाज कही, लेकिन कोई कह सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब का दौर था, हजरत उमर उस चौक में रहने वाले थे। हजरत उमर का दौर जब आया तो आपने अपनी फौजों को एक जगह पे जमा किया हुआ था किसी मुल्क में भेजने के लिए। खबर आई कि उस मुल्क में ताउन फैल गया, बीमारी फैल गई है, तो हजरत उमर ने स्टिल कहा कि उम्मत जाएगी। तो खालिद बिन अब्दुल रहमान बिन औफ थे या अब्दुल रवाहा नाम था कोई सहाबी थे, कहने के हजरत उमर नहीं जाएगी फौज। क्यों नहीं जाएगी? कहा अल्लाह के नबी से मैंने सुना है कि जब किसी बस्ती में वबा फैल जाए तो वहां के लोग बाहर ना जाएं और बाहर के वहां ना आए। उमर कहते हैं मैंने कोई नहीं सुनी ये बात। अच्छा तुम ये नबी पे इतनी बड़ी बात कह रहे हो, इधर ही खड़े हो जाओ। एक सहाबी को वहां से निकाल के भेजा जाओ मदीना इस खबर की तस्दीक करके आओ, कोई और सहाबी मिलता है जो ये कहता है? आप देखिए रिसर्च कैसे कराते थे, फौज रोक ली लेकिन उनको भी नहीं जाने दिए कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें मार पड़ेगी कि तुमने नबी के नाम पे झूठ बोला है। वो सहाबी वहां से गए मदीना में जाकर मस्जिद नबी में ऐलान किया, लोगों को इस बात की गवाही देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने खुद सुना हो कि किसी जगह वबा फैल जाए तो नहीं जाना और नहीं निकलना। दसियों लोग बोल पड़े, मैंने भी सुनी है, मेरे सामने ये भी थी, तस्दीक हो गई। वापिस वो शख्स आया, उमर बात ठीक है इनकी? अच्छा, फिर उमर खुद को मलामत करते हैं। उमर वहां रहने वाले, उनको नहीं पता थी। आप देखिए ना, आप कोर्स कर रहे हैं, आपके पूरे कोर्स में 20 छुट्टियां हो गई मिसाल है, तो 20 सबक आपने नहीं सुने, तो आप कह सकती है ना जो 20 दिन में सबक में बात हुई थी वो कुरान में है ही कोई नहीं। कौन आके भी पूरा 100% आया होता है, हम सब इंसान हैं। यानी सहाबा को देख लीजिए, उमर कहते हैं कि उमर बाजारों के भावताओं ने तुझे मसरूफ कर दिया और तू नबी से बात नहीं ले सका, कब वापस जाएगी फौज? ऐसा एक नहीं, 20 वाक्यात मैं आपको सुना सकती हूँ। नबी के साथ उठने बैठने वाले सहाबा को नहीं पता होता था कि ये बात नबी ने कही कि नहीं कही। तो क्या अबू बकर उमर उस्मान ना ये दावा करें और बाद के लोग ये, वो बेचारे तो खुद भी दावा नहीं करके गए। आप पढ़ लीजिए, आपको जो बुक्स पढ़ाते हैं इसमें इत्तबाए सुन्नत के मसाइल, उसके आखिरी चैप्टर को जाके खुद पढ़ें, आइमा कराम क्या कहते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद कहते हैं हमारा कोई कॉल तुम्हें हदीस के मुखालिफ मिले, हमने आज की रिसर्च के साथ पढ़ा, ना हमारे सामने समझ आए तो तुम उसको दीवार पे मार दो और नबी की हदीस ले लो। और ये जो इतना आज खूबसूरत पाइल अप करके दीन आपको लाइब्रेरियों और बुक स्टोर्स में मिलता है, ये पहले नहीं था। आज भी मैं पढ़ा के जाती हूँ ना आपको, इतनी कोशिश के बावजूद भी जब मैं पढ़ा के घर जाती हूँ ना तो मैं देखती हूँ तो मैंने कई दो चार बातें नहीं बताई होती जो मुझे पता थी या मैंने कोट की भी थी, नहीं बताई, भूल जाती हूँ। हालांकि सामने पास दफा कॉपी में लिखी भी होती है, कोई पॉइंट नोट किया है, कोई तफसीर की बात अच्छी लगी, मैं नहीं बता पाती बातों में, जोश में बंदा बात करके चला जाता है। तो फिर जब एक बंदा इतना कमजोर है तो वो आयमा कराम के पास इस तरह किताबें नहीं थी जैसे आज होती हैं, नियतों पे शक किसी के नहीं, वो चारों आयमा कराम जिस मसलक पे थे आपको मुझे उस पे होना है, बस इतनी बात कर ले। और जब कुरान पढ़ते हैं तो सीने खुद ही खुल जाते हैं, इससे हटेंगे तो फिर आपको फिर दूसरे रंग की ग्लासेस से फिर वही ठीक दिखेगा, नहीं किसी एक इमाम से तो जुड़ो, किसी एक का तो साथ रखना पड़ता है। तो फिर आप दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं ना कि ये एक इमाम को ज्यादा हक है नबी से सल्लम से बात करने का, कि जी नबी से सल्लम के हदीसें पढ़ के आम बंदा दीन नहीं समझता। तो ये जो नबी से सल्लम से लेकर सहाबा और ताबईन तबा ताबईन की बेहतरीन नस्लें, ये किन आयमा कराम के अकवाल से दीन पे थी? क्या ये सारे जाहिल थे? क्या इनको दीन समझ नहीं आया था? और क्या नबी से सल्लम को बात का सलीका नहीं आता था? आप तो कहते हैं कि लोगों में तुम्हें कैसे दीन पे छोड़ा हूं कि लैलुहा का नहारीहा, जिसकी रातें जिसकी सुबह की तरह रोशन है। صحابی کہتے ہیں حضرت انس کہ ہمارے سامنے سے ایک پرندہ بھی اڑتا جاتا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا. مدینہ میں رہتے ہوئے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تانا دیتے تھے، تمہارا نبی تمہیں واش روم میں ٹوائلٹ میں جانے کے طریقے سکھاتا ہے کہ بائیں ٹانگ پہ بیٹھو، اس طرح بوجھ ڈالو، تو اس نے تانا دیا. تو صحابی نے فخر سے کہا ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا لیڈر دیا کہ ہمیں وہ قضاء حاجت کے بھی طریقے بتاتا ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھوری شدوری باتیں ملی جلی اور ایک پٹاری میں سارا دین ڈال کے دے گئے اور بعد میں کہا کہ اب تم سارٹ آؤٹ کر لو؟ یہ تو زیادتی کی بات ہے. اور انہوں نے یہ دعوے نہیں کیے، یہ موضوع تیسرے پارے کی پہلی آیت میں بھی چھڑتا ہے، لیکن ساری بات مجھے امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہے. اب اس آیت سے لگ کیا رہا کہ یہ تینوں گروہ ایک دوسرے کے خلاف ہے نا، یہود نصارہ کے، نصارہ یہود کے، اور اہل کتاب ان کے. تو پھر کس چیز پہ یہ جمع ہوتے ہیں؟ اسلام دشمنی پہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. سورۃ حشر میں آپ پڑھیں گے یہ آیت. تحسبہم، تم سمجھتے ہو ان کو کہ یہ بہت جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. آپ ذرا سی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے ان کی آپس کی لڑائیاں کتنی شدید تھیں. اگلی آیت تو میں اسی کا تذکرہ ہونے والا ہے کہ یہود کو جب بھی بیت المقدس پہ اقتدار ملا نا، انہوں نے وہاں کرسچنز کی انٹری روک دی. نصارہ نے جب بھی قبضہ کیا انہوں نے جیوز کو آنے سے روک دیا. حضرت عمر کو جس کرسچین نے چابی دی تھی بیت المقدس کی، ان کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو ایک شرط رکھی تھی، اے عمر ہم آپ کو یہ چابی دے رہے ہیں پر شرط ایک ہے، کسی یہودی کو اس میں قدم نہیں رکھنے دینا. ایک ہی بیت المقدس ہے ان کا، جیسے ہمارا قبلہ ہے. تو جیوز ایک سائڈ کو پوچھتے ہیں، ایسا منہ کرتے ہیں، دوسرے اس کو اپوزٹ پہ کرتے ہیں. ایک بائبل ہے ان کی تورات، وہ اس کا اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، یہ اس کا لاس پڑھتے ہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایک چیز پہ جمے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اسلام دشمنی. یہ اسلام کے نام پہ جڑ جاتے ہیں، اور ادروائز ان کے بیچ میں نہیں. بلکہ کفار مکہ نے تو یہ بات تک کہہ دی تھی کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ تم ایمان والوں سے زیادہ ہیں. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیچ میں سے اگر اسلام کو نکال دیں تو یہ ایک دوسرے سے بہت لڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے جو میں نے شروع میں سوال چھیڑا تھا کہ جب فرقہ واریت آتی ہے، اتنے مختلف فرقے، اتنی جماعتیں، اتنے گروہ، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے.